Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استقى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. معارف القرآن جلد نمبر 3 ہماری ریفرنس بک ہے، اور آیات نمبر 74 سے لے کے 81 تک کے جو گروپ ہے اس کی ہم جو ہے وہ خلاصے تفسیر پڑھ رہے تھے اس کی کلاس میں. تو امید ہے کہ جو خواتین و حضرات اس کلاس کے اندر شامل ہیں تو وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، اپریشیٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن عظیم الشان، تو اس میں بظاہر ایک سادہ سے لکھے ہوئے واقعے کے اندر ہمارے لیے کتنی ساری ہدایات موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کی اگر کوئی لسٹ بنانے کو آپ کو کہے تو بڑا اچھا ہوتا. آپ کو اسائنمنٹ دیا جاتا ہے کہ ذرا ہدایات جو خالی اس کلاس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ہوں گی، لیکن اس کلاس کے اندر جو ہم نے پچھلے 3-4 دن میں ڈسکس کری ہیں تو ان کی ذرا لسٹ تو بنائیں، تو پھر مزہ آئے. لیکن ہم آپ کا رمضان جو ہے وہ اس کام میں بھی نہیں لگانا چاہ رہے. آپ کو اور بھی ظاہر مصروفیات ہیں، عبادات کی بھی ہیں، تلاوتوں کی بھی ہیں، افطاری بنانے کی بھی ہیں، کھانے کی بھی ہیں، اور تراوی پڑھنے کی بھی ہیں جو کہ سنت مؤکدہ عبادت ہے. تراوی پڑھنا جو ہے رمضان المبارک کی راتوں میں، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی تاکید کے ساتھ صحابہ کرام نے اس کو کیا، اگرچہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3-4 دن سے زیادہ باہر آ کر کے تراوی نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام نے اس کے اوپر باقاعدگی سے عمل کیا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ لیتے اس طریقے سے تو پھر وہ واجب ہو جاتا. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اوپر سختی کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ واجب کے درجے میں نہیں لانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نہیں لانا چاہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا عمل نہیں کروایا، لیکن یہ سنت مؤکدہ ضرور بن گئی. تو سنت مؤکدہ ویسے ہی جیسے کہ ظہر کی سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اور مغرب کی 2-3 کے بعد جو 2 ہوتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اور عشاء کی 4 کے بعد جو 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اور فجر کی بھی 2 جو فرض سے پہلے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو سنت مؤکدہ کا شریعت میں حکم کیا بنتا ہے، یعنی بیسڈ آن دا دلائل دیٹ وی گیٹ فرام حدیث. ٹھیک ہے، کیا اس کا حکم بنتا ہے کہ اگر بلا عذر سنت مؤکدہ کو ترک کر دیا جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ گناہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، بلا عذر، یعنی ایک جینوئن ریزن ہے، کوئی آپ کی طبیعت خراب ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کو بہت ہی ٹرین چھوٹ رہی ہے، جہاز چھوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ آپ سفر میں ہیں، سفر بھی ایک عذر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر سفر میں ہیں اور اس طرح کی دوسرا کوئی جینوئن عذر ہے تو پھر سنت مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ملے گا، یعنی پٹائی نہیں ہوگی، گناہ از اکول ٹو پٹائی. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس وجہ سے جس کا کوئی عذر نہیں ہے وہ ضرور سے تراوی پڑھنے کی کوشش کرے رمضان المبارک کے اندر. خواتین کی تراوی کے الگ احکام ہیں، وہ گھر میں اپنے پڑھیں، خود سے چند صورتیں جو بھی یاد ہیں ان کو لگا کر کے اپنی انفرادی تراوی پڑھیں. اگر گھر کے اندر کوئی مرد تراوی پڑھا رہا ہے تو پردے میں، یعنی اگر وہ شوہر ہیں تو پھر تو پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی بیٹا ہے وہ تراوی پڑھا رہا ہے تو پھر تو پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر محرم گھر کے اندر آ کر کے، جیسے قاری صاحب آ جاتے ہیں گھروں کے اندر وہ تراوی پڑھاتے ہیں، تو پھر پردے کے پیچھے جو ہے وہ عورت اس جماعت کے اندر اپنے گھر میں ہوتے ہوئے شامل ہو سکتی ہے، لیکن گھر سے باہر جا کر کے تراوی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर जाकर के तरावी पढ़ने की, ठीक है। तो घर से बैठ करके अल्लाह ताला ने जूम की क्लास लेने का इंतजाम फरमाया ना, तो फिर वो जूम की क्लास ले लें, बाहर जाके तरावी पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर में पढ़ने जो छोटी छोटी सूरतें याद है उन्हीं की तरह, ठीक है। फिर उसकी बाकी मजीद तफसील है तो फिर वो इस क्लास के अंदर, तो हमने तफसीर पढ़नी है, तरावी की तफसील तो नहीं पढ़नी है। तो हम यहाँ पर आते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाकया अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है तो इसके अंदर बहुत सारी हिदायत की बातें हमारे लिए हैं, उम्मीद है कि आप उनको नोट कर रहे होंगे, कर रही होंगी, ठीक है। खवातीन और मर्दों दोनों से खिताब हो रहा है इस क्लास के अंदर। तो इसमें कल जो हमने आखिरी एक नुक्ता आपके सामने पेश किया था वो ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बतौर मिसाल के पेश किया, ठीक है, कि मैं तो इनसे बेजार हूँ, मैं तो इनसे बेजार हूँ। और ये मिसाल के तौर पर अपने आप को इंसान कब पेश करता है, जब कोई बात अगले बंदे को समझानी जरा मुश्किल नजर आती, कोई जरा कॉम्प्लिकेटेड सी बात होती है कि जिसके नुकसानात इतने वाजह नहीं होते, मतलब किसी चीज से रोकना है, रोकना है, लेकिन उसका नुकसान इतना वाजह नहीं है कि आप जो है वो किसी को आसानी से समझा सकें, ठीक है, तो फिर अपनी मिसाल पेश की जाती है, ठीक है, कि भाई आपने मुझे देखा है ऐसा करते हुए, आपने कभी हमें देखा है ऐसा करते हुए, या अगर अपने आप को मिसाल के तौर पर नहीं पेश कर सकते तो कम अज कम किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक होना चाहिए कि जिसको कि आप मिसाल के तौर पर पेश कर सके, खुसूसन अपनी औलाद के सामने, खुसूसन अपने जो है वो अहलोयाल के सामने, ठीक है। तो कल बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने हजरत जी के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक पूरे घराने के साथ, पूरे दोस्त अहबाब के साथ, सबके साथ तो ऑफकोर्स नहीं होता, लेकिन जितने जिनों के साथ मुमकिन हुआ उनका ताल्लुक हजरत जी के साथ अलहमदुल्ला जोड़ने की भरपूर कोशिश की, और उसका फायदा हुआ कि फिर हजरत जी हमारे लिए एक लिविंग मिसाल बन गए। अब दुनिया से चले गए, अब अल्लाह ताला खुद बनने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है, या कोई और ऐसी मिसाल अता फरमाए, अलहमदुल्ला मौजूद हैं ऐसे लोग अभी भी दुनिया के अंदर, जिनको मिसाल बनाया जा सकता है। तो ये मोहब्बत जो होती है ना, ये ईमान की हिफाजत के लिए लाजमी होती है, एक जिंदा इंसान के साथ मोहब्बत, ठीक है, अल्लाह की निस्बत के साथ किसी जिंदा इंसान से मोहब्बत, ये ईमान की हिफाजत के लिए लाजिम होती है, क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर किसी ऐसे शख्स के साथ या किसी ऐसे गिरोह के साथ मोहब्बत बन जाएगी कि जो फिर ईमान की नफी करने वाला गिरोह होगा। जैसे हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो काफिरों का बनाया हुआ, अल्लाह के इनकार करने वालों का, दीन का इनकार करने वालों का एजुकेशन सिस्टम जब हम उसके अंदर डालते हैं, खुद भी उसी इसमें से डल के निकले हैं, तो फिर हमारे दिल में किनकी मोहब्बत पैदा हुई, जिन्होंने वो एजुकेशन सिस्टम बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने अपनी कामयाबियां और कामरानियां और अपनी अच्छाइयां सारी की सारी बयान करी, और फिर जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, उन एजुकेशन सिस्टम के बुक्स को जो पढ़ाते हैं वो भी जो है वो उन्हीं की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, तो फिर जो बच्चे उस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ करके निकलते हैं उनके दिलों के ऊपर मोहब्बते कुफर, मोहब्बते कुफार, मोहब्बते दुनिया, ये सारी की सारी छा चुकी होती है, ठीक है, उनके ऊपर उनकी मोहब्बत छा चुकी होती है, हत्ता के छा किस दर्जे तक मोहब्बत छा चुकी होती है, इबादत के दर्जे तक मोहब्बत छा चुकी होती है। यानी कल बताया था ना मोहब्बत के दर्जे, राइट, क्या बताए थी, रगबत, फिर उसके बाद बढ़ता है तो फिर ये तलब बनती है, तलब बढ़ती है तो फिर वो मोहब्बत बनती है, मोहब्बत बढ़ती है तो फिर वो इबादत बन जाती है। अब इबादत का मतलब क्या होता है कि इतनी मोहब्बत किसी से करे कि दूसरी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाए उसके सामने, दूसरी सारी चीजें उसके सामने सेकेंडरी हो जाए, ठीक है। तो इस निजाम से जिसका जहन बन गया, जिसका दिल बन गया, अब उसके लिए बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, कम से कम सेकेंडरी हो जाती हैं, कम से कम सेकेंडरी हो जाती हैं। दीन भी हम कहते हैं ना कि जी हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, इसी एजुकेशन सिस्टम से बन करके निकले, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम जकात भी दे देते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, उमरे शुमरे भी करके आ जाते हैं, तो हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है? आप खामखाई कहे चले जा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम से जो है वो मोहब्बत पैदा हो जाती है, बल्कि इबादत के दर्जे पर ले जाती है वो मोहब्बत, इबादत के दर्जे पे मोहब्बत पहुंच जाती है इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए से, हमें तो नहीं हुआ, हम तो नमाजें पढ़ते हैं, जी पढ़ते हैं, लेकिन क्या उसको नंबर 1 दर्जे पे रख के पढ़ते हैं, या ये कि उससे ज्यादा अहम चीजें भी मौजूद हैं दिल के ऊपर जो है वो, उससे दूसरी चीजों की अजमत इससे ज्यादा है, ये भी कर लेते हैं, लेकिन जब छोड़ने की जरूरत पड़ती है किसी दूसरी प्रायोरिटी की वजह से तो उसको आराम से छोड़ देते हैं, राइट? झूठ बोलना, जब झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है तो फिर सच को छोड़ देते हैं, वैसे सच बोल लेते हैं, लेकिन सच को छोड़ना इतना मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए, नमाज को छोड़ना इतना मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए, और खुसूसन खवातीन तो माशाल्लाह मौजूद हैं, तो पर्दे को छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं हमारे लिए, हाँ कर भी लेती हैं, बुरका भी पहन लेती हैं, लेकिन जहां कोई और मसला आया, जहां कोई और प्रायोरिटी आई, उधर कॉम्प्रोमाइज हो गया ये। तो भाई मोहब्बत किसकी हुई? दीन की मोहब्बत तो ना हुई ना, अल्लाह की मोहब्बत तो ना हुई ना, गालिब तो ना हुई ना, मगलूब हुई, मगलूब मोहब्बत हुई अल्लाह की और दीन की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गालिब मोहब्बत तो ना आई, गालिब मोहब्बत तो फिर इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ करके निकलने वाले, इस सिस्टम की बनी और जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है, ठीक है? इन्होंने यहाँ पे मर्दों में एक मैसेज आया है कि माई मैथ प्रोफेसर वॉज ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ही यूज टू से दैट इट इज बेटर फॉर हिम टू डू तवाफ ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज एज कंपेयर टू गोइंग टू काबा, ठीक है? अब ये खुल के उसने बोल दिया ना, यानी इन्होंने क्या लिखा कि इनका मैथ प्रोफेसर, अब जाहिर है ये किसी मुसलमान की बात कर रहे हैं जिसका नाम मुसलमान होगा, जो पैदा जो है वो शायद पाकिस्तान में हुआ होगा या किसी मुसलमान घराने में पैदा हुआ होगा, किसी काफिर की बात तो नहीं कर रही है, हमारे पीएचडी डॉक्टर साहब बैठे हुए इधर वो बता रहे हैं कि उनका जो मैथ प्रोफेसर था ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, वहां से ग्रेजुएट करके आया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो कहता था कि किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का तवाफ करना मेरे लिए ज्यादा अहम है काबा का कब तवाफ करने से, काबा का तवाफ करने के मुकाबले, ठीक है? तो वो मुनाफिक नहीं था, कम अज कम वो काफिर था, मुनाफिक नहीं था, हम जो है ना मुनाफिक हैं, ऊपर से कहते नहीं हम अल्लाह का काबा हमारे लिए ज्यादा अहम है, लेकिन अंदर जो है ना वो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज हमारे लिए ज्यादा अहम होता है, इस तरह की कोई और चीज, वो पक्का काफिर था, खुल करके कह भी रहा था, ठीक है? तो वो ऐसे कैसे कौन बन गए, ही बिलोंग टू ए मुस्लिम पाकिस्तानी फैमिली, ठीक है? तो इस तरह की बेशुमार वाकयात हमारे सामने मौजूद हैं, तो भाई ऐसा एक्सपोजर मिलता है ना कि जहां पे एतमाद उस पर बनता है, एतमाद काफिर पे बनता है, एतमाद काफिर की कामयाबियों के ऊपर बनता है, तो फिर अल्लाह और रसूल और सहाबा के ऊपर कहाँ से एतमाद बनेगा, राइट? मुमकिन नहीं है, हमने पता नहीं क्या तमाशा बना रखा है, हमने क्या अपने आप को धोखा दे रखा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, वी केम आउट प्रेटी गुड, राइट? धोखा है ये, और कुछ भी नहीं है इसकी हैसियत सिवाय धोखे के, ठीक है? क्या लिखा है उन्होंने, नमाज नहीं भी छोड़ी तो उसके मकासद से नहीं पढ़ते, बस आदतन पढ़ते हैं, जी नमाज आदत बन जाती है माशाल्लाह, यानी एक तंजिया बात है, असल में वो आदत भी नहीं बनती, वो वेन इन रोम डू एज अ रोमन्स डू वाला ज्यादातर मामला चल रहा होता है। मेरे दो घर के बाद दो लड़का तरावी पढ़ता है तो वहां भी जाना मकरूह होगा, और हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो क्या वो तरावी कबूल नहीं होगी? घर में पढ़े, घर में नबी अलैहिस्सलाम ने चाहत बता दी अल्लाह ताला की, ठीक है? नबी अलैहिस्सलाम ने चाहत भी बता दी घर में नमाज पढ़ना, ठीक है? तो अपनी अकल को जो है ना वो छोटी सी अकल होती है, इल्म से महदूद होती है, आज आपको इल्म हासिल हो गया तो अब उस इल्म के मुताबिक अमल करें, घर में नमाज पढ़ें, ठीक है? खामखा के अपना दीन नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बतौर मिसाल के पेश किया, तो यू हैव मतलब वी नीड सच एग्जाम्पल्स, ये हमारी जरूरत है कि हमारे जिंदगी में ऐसे लोग मौजूद हों जो कि अपने आप को मिसाल के तौर पर पेश कर सकें, और पीपल कैन लुक अप टू देम, स्पेशली आवर किड्स, हमारे बच्चे उनको देख सकें कि हाँ ये अच्छा, हमें इनके जैसे बनने की कोशिश करनी है, या कम से कम ये अगर किसी चीज को नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अच्छी चीज नहीं होगी, ठीक है? वरना वरना बस जो है ना, बस किताबें होती हैं ज्यादा से ज्यादा, और किताबों को पढ़ाने वाला उस्ताद जो होता है वो कौन होता है? शैतान। दीनी किताबें तो होती हैं लेकिन उस्ताद कौन होता है जो किताबें पढ़ा रहा होता है? वो एक अनदेखा शैतान होता है, वो किताबें पढ़ा रहा होता है, और फिर ऐसा दीन जो होता है ना, वो किताबें तो दीनी होती हैं लेकिन उस्ताद साहब जो है वो शैतान होते हैं, तो फिर वो दीन ऐसे ही होता है जैसा हमारा दीन है, ठीक है? तो इन बातों को समझने की जरूरत है ना, तो फरमाए। तो एक तो ये हो गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश किया ना, और दूसरा पीछे से और भी अहम अहम नुकात जो कि अभी तक हमने डिस्कस भी नहीं किए, कि देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सारा सारी मेहनत क्यों करी, दावत तो तबलीग कर रहे हैं ना, तौहीद की तरफ बुला रहे हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग के लिए इतनी मेहनत करी, ये तो कल हम बात कर चुके हैं, ठीक है, कि तौरिया तक इस्तेमाल किया उसके लिए, सही है, लेकिन तौरिया क्यों इस्तेमाल किया, झूठ क्यों नहीं बोल दिया कि भाई मैं तो अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ लोगों को, तो चलो झूठ भी बोल दूंगा, नेक काम के लिए झूठ बोलना तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हम करते हैं ना, नेकी के लिए जो है वो कोई गुनाह कर लेते हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए गुनाह कर रहे हैं, नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होता कि राजी अल्लाह को करना है और अल्लाह की नाफरमानी करके राजी करना है, ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वेंट आउट ऑफ द वे, इसको अंग्रेजी में जरा अच्छे से हम शायद बयान कर सकें कि ही वेंट आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर दैट ही डज नॉट लाई, कि वो झूठ ना बोले, राइट, तो इसके लिए इतनी गहराई इस्तेमाल करी, वो इल्म इस्तेमाल किया, वो मार्फत इस्तेमाल करी जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी, और इसको कैजुअल नहीं लिया कि कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, झूठ बोलते सभी बोलते हैं, मैंने भी बोल दिया तो क्या हो गया, जैसे हमारा एटीट्यूड है ना, सब बोलते हैं तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई, नहीं, झूठ इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन, झूठ तो बोलना ही नहीं है, ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हरगिज नहीं बोला, ये भी नहीं कि अल्लाह के लिए बुलाने के लिए, कोई बड़ा 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 मकसद था इस वजह से झूठ बोलते, नहीं, ठीक है, तो हमारा भी झूठ के बारे में ऐसा ही एटीट्यूड होना लाजमी है कि झूठ तो हमारे डिक्शनरी में मौजूद ही ना हो, पॉसिबिलिटी नहीं है झूठ बोलने की भाई, ठीक है, तो हमारे मशायख ने हमें एक बेहतरीन दुआ सिखलाई शेर की न की के अल्फाज में, ठीक है, शायर के अल्फाज में एक दुआ सिखलाई, ठीक है, क्या दुआ है, हमें याद करनी चाहिए, ठीक है, लोग कल बता दिया था कि भाई वो ला महबूबी अल्लाह वगैरह, तो फिर मैसेज आता है जी वो वजीफा आपने बताया था ना, वो वजीफा कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये वजीफों की ऐसी चाट लगी हुई है हमें, अल्लाह महफूज फरमाए इन वजीफों से, ठीक है, बात को समझने की तौफीक अता फरमाए, इल्म हासिल की तो करने की तौफीक अता फरमाए, और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर चीज के लिए वजीफा, हर चीज के लिए वजीफा निकले इसके अंदर से, ठीक है, जो आपके शेख ने दिया है बस वो करें, और इसके अलावा वजीफों की हंट में ना रहा करें, शिकार करना ना, वजीफों के शिकार में निकले हुए होते हैं हर वक्त, जैसे शिकारी निकला होता है वो हिरन के शिकार में, उसी तरह हम वजीफों के शिकार में निकले हुए होते हैं, इधर से मिला उधर ही उसको शिकार किया वजीफे को, ठीक है, तो इल्म हासिल करें, इस बात को समझें, ये इस मकसद बताया जा रहा है आपको, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अच्छा, तो हमारे मशायख ने एक दुआ सिखलाई, क्या, गमे हयात के साए मुहीत ना करना, गमे हयात के साए मुहीत ना करना, किसी गरीब को दिल का गरीब ना करना, किसी गरीब को दिल का गरीब ना करना, मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना करना, मैं इम्तिहान के काबिल नहीं हूं ऐ मेरे मौला, ठीक है, किसी ऐसी सिचुएशन में आप मुझे डालिए ही नहीं कि जहां पर मुझे अपनी कमजोरी की वजह से झूठ बोलना पड़ जाए, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि जिसके अंदर झूठ के रास्ते से मैं बाहर निकल सकता हुआ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकूंगा ऐ अल्लाह, लेकिन ऐ अल्लाह आप मुझे बचा सकते हैं, आप ऐसे सिचुएशन में मुझे डाले ही ना, तो ये फिक्र जब अल्लाह ताला को बंदा दिखाता है ना, फिर अल्लाह ताला उसको मुसीबत में पड़ने ही नहीं देते, लेकिन जिसको के लिए कोई मसला ही नहीं, हाँ भाई मुसीबत पड़ेगी झूठ बोल दूंगा, कोई मसला कोई थोड़ी है मसला है, कोई झूठ बोल देना, हमने तो पीएचडी करी हुई है झूठ बोलने में, डबल पीएचडी करी हुई है झूठ बोलने के अंदर, राइट, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे को उस मुसीबत में डालते हैं, क्योंकि इसका एटीट्यूड अल्लाह ताला को पता होता है, इसके दिल की नीयत अल्लाह को पता होती है, इसके तो दिल में नीयत ही है झूठ बोलने की, ये तो पहले से तैयार बैठा हुआ है, बैठी हुई है झूठ बोलने के लिए, चलो जाओ जाकर के झूठ बोलो और जहन्नुम के लिए अपने आप को क्वालिफाई करो, ठीक है, अल्लाह ताला गैरतमंद है, बेगैरत नहीं है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला देखते हैं ना इसको, इसको कोई 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 तलब ही नहीं है मेरी, इसको जो है वो मेरी जन्नत का, जहन्नम का कोई खौफ ही नहीं है, जन्नत का कोई शौक ही नहीं है। हम जैसे उर्दू में कहते हैं ना, हमें नहीं बात समझ, हम तो अपने अकल के ऐसे पुजारी बन जाते हैं उस तालीमी निज़ाम में जाने के बाद कि हमें तो बातें भी समझ में नहीं आती ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला फिर उसको धक्के देते हैं, जहन्नम की तरफ धक्के देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, ये अल्लाह ताला बेशक रहीम और करीम है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हमारी मोहब्बत चाहते हैं। ठीक है, और ये जो हम अल्लाह ताला के साथ इंतहाई घटिया रवैया रखते हैं ना, इंतहाई यानी जिल्लत आमेज रवैया रखते हैं अल्लाह ताला के साथ, तो अल्लाह ताला याद रखना चाहिए हमें, अल्लाह ताला बेगैरत नहीं। ठीक है, ये कोई बात नहीं। अबू जहल को खामखा में नहीं जहन्नुम में डाल दिया ना, फिरौन को खामखा में नहीं जहन्नुम में डाल दिया ना, नमरूद को और हामान को खामखा में जहन्नुम में नहीं डाल दिया, रवैये की वजह से जहन्नुम में डाल रहे हैं अल्लाह ताला ने। ठीक है, उसी तरह जो हर काफिर होता है वो रवैये की वजह से अपने जहन्नुम में जाता है, अल्लाह ताला ऐसे है, बेशक रहीम है करीम है, गलतियों को माफ फरमाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बेगैरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का एटीट्यूड रखना है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, ए मैं इम्तिहान के काबिल नहीं मेरे मौला, मुझे गुनाह का मौका नसीब ना कर। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर वैसे तो यहाँ पर वो तफसील नहीं है, लेकिन सूरह अंबिया के अंदर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यही वाला वाकया नकल है ना, तो वहां पे जब हमने वो क्लास में पढ़ाई थी, तो फिर मुफ्ती शफीर रहमतुल्लाह अलैह की वो सारी तफसीर हमने पढ़ी थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बज़ाहिर गलत बयानी करी थी, तो उसका फिर जिक्र है नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के अंदर के वो किज़बात इब्राहिम, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के झूठ थे। किज़बात, किज़ब का जो किज़ब का जो लफ्ज होता है उसका मतलब उर्दू में झूठ बनता है। ठीक है, तो इस लफ्ज के इस्तेमाल की वजह से जो कि हदीस में आया कि ये किज़बात इब्राहिम थे, ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तीन झूठ, तो जो अकल परस्त है ना, अकल परस्त, ठीक है, अपने अकल के गुलाम, तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे झूठे हो सकते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खलीलुल्लाह है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम झूठे तो नहीं हो सकते। तो फिर क्या किया उन्होंने, अकल परस्त, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यह हदीस गलत है, यह हदीस हो ही नहीं सकती, गलत है। हालांकि वो हदीस बिल्कुल सही हदीस है, और तमाम उसके असनाद जो है वो मुहद्दिसीन ने चेक करी हुई है, बिल्कुल सही हदीस है वो, लेकिन अकल परस्त का मतलब ये होता है कि इल्म नहीं है, बस इल्म के बगैर ही अपनी अकल को जो है वो कुल समझा हुआ है, या किसी और की अकल को कुल समझा हुआ है, किसी और जाहिल की अकल को मेयार बनाया हुआ है, जिसके पास खुद भी इल्म नहीं है, या तो अपनी अकल को मेयार बनाया हुआ है, अपने पास इल्म नहीं है लेकिन अपनी अकल को फिर भी स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। और अकल परस्त की दूसरी फॉर्म ये होती है कि अपनी अकल को तो स्टैंडर्ड ही बनाया इतना ज्यादा, लेकिन किसी दूसरे जाहिल की अकल को स्टैंडर्ड बनाया। ठीक है, तो इसको अकल परस्त कहते हैं, इल्म है नहीं लेकिन फिर भी अकल परस्त, अकल की मान रहे खाली। तो उन्होंने कहा जी ये हदीस ही गलत है, लेकिन जो सही इल्म वाले थे, ठीक है, वाकई जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया था, जिस इल्म से उनकी मालूमात में भी इजाफा हुआ था और अपने बारे में भी उनकी, जिसको ह्यूमिलिटी का पैदा होना कहते हैं, हम्बलनेस का, और जो है वो अल्लाह ताला की मारिफत का पैदा होना जिस इल्म की वजह से होता है ना, वो इल्म जिन लोगों के पास था, तो उन्होंने फिर अल्लाह ताला की दी हुई बसीरत से इस हदीस को देखा। ठीक है, फिर उनके ऊपर अल्लाह ताला की फिर रहमतें नाजिल होती है ना, तो उन्होंने इस हदीस को देखा, उन्होंने कहा भाई इसमें तो ये है ही नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं, भाई लफ्ज झूठ का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन यहाँ पे मफहूम झूठ का है ही नहीं, मफहूम झूठ का है ही नहीं। ठीक है, तो अब ऐसे लोगों ने फिर उस हदीस को एक्सप्लेन किया, तफसील के साथ एक्सप्लेन किया कि भाई असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, और इसकी ये दलील है, बाकायदा दलील भी पेश करी, ये नहीं कि सिर्फ हम समझ रहे हैं कि ऐसा है, बल्कि बाकायदा अकली या नकली दलील भी पेश करी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ नहीं बोला, यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम की ये मुराद नहीं है कि जिसको के आम मानी में झूठ का लफ्ज इस्तेमाल किया समझा जाता है, यहाँ पे वो मुराद ही नहीं है, अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं अल्लाह के लिए दो बोले इसमें से, अल्लाह ताला के लिए दो बोले उसमें से। तो अल्लाह ताला के लिए दो बोले क्या मतलब, अल्लाह का हुक्म तोड़ा, अल्लाह अल्लाह के लिए अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया, अल्लाह के लिए अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया? नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ा। फिर उसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन मौजूद है, ठीक है, पढ़ना चाहिए। अगर हमें कोई इस किस्म का सवाल आ रहा है जहन में तो उस बात को समझना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा नुक्ता यहाँ पर आज जो बयान हो रहा है, नया नुक्ता, एक तो वो हो गया ना कि झूठ से हर सूरत हमने बचना है, ठीक है, उसको ऑप्शन ही नहीं समझना अपने लिए। और दूसरा नुक्ता ये कि बड़ों की कोई, जिनको के हमने बड़ा माना है, उनकी कोई गलती जो है जब नजर आती है ना, तो भाई उसके लिए तावील करनी होती है, उसके लिए इल्म हासिल करना होता है। ये नहीं कि या तो आप बड़ों को बुरा कहना शुरू कर दें, या ये कि जो आपको खबर पहुंच रही है, अगरचे कि वो सही खबर है, उस खबर को जो है वो आप डिनाई करना शुरू कर दें। भाई इल्म हासिल करें, बात की समझ हासिल करें, तो मसला हल हो जाएगा। इसको कहते हैं तावील करना। तो बड़ों की हमने तावील करनी है, ठीक है। अच्छा, आगे हम पढ़ रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ये कहा ना, आपने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार और नफूर हूं, ठीक है, यानी बराअत जाहिर करता हूं। एतकादन तो हमेशा से ही बेजार थे, लेकिन अब मैं जाहिरी तौर पर भी अपनी बराअत जाहिर कर रहा हूं। तो मैं सब तरीकों से यकसू होकर अपना रुख जाहिर का और दिल का उस जात की तरफ करना तुमसे जाहिर कर, यानी ये नहीं कि आज मेरा दिल अल्लाह की तरफ अल्लाह की तरफ मेरा दिल आज मायल हुआ है, नहीं, मेरा दिल पहले से अल्लाह की तरफ मायल था, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने इजहार नहीं किया था इसका अब तक, आज मैं इजहार भी कर रहा हूँ। लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज के जो कि कुरान मजीद में नकल हैं, उनकी तफसीर बयान कर रहे हैं ताकि हमारे हमारे लिए बात खुल जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तौफीक से वो कर रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कर रहे, नहीं है। और अल्लाह ताला ऐसे ही करते हैं। देखिए कुरान मजीद जो है ये बहुत मुख्तसर किताब है, एक छोटा सा बच्चा भी उसको हिफ्ज कर लेता है और एक 90 साल का बूढ़ा भी उसको हिफ्ज कर लेता है। अल्लाह ताला ने हमारी कैपेसिटी, हिफ्ज करने की कैपेसिटी के मुताबिक इस कुरान मजीद को बहुत ही कंसाइज बनाया है। जिसको अरबी का कुछ पता नहीं होता सिवाय पढ़ने के, वो भी कुरान मजीद को हिफ्ज कर लेता है, राइट, पता ही नहीं होता कि वो पढ़ के आ रहा है कि लिख, उसको हिफ्ज हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसको कंसाइज बनाया है, कम बनाया है। तो अब इसकी जो एक्सप्लेनेशंस अल्लाह ताला ने फिर वो अहले इल्म को अता फरमाई, जिनमें सबसे पहले हज़रत नबी अलैहिस्सलाम खुद, सबसे पहले मुअल्लिम नबी अलैहिस्सलाम खुद। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तशरीहात बयान फरमाई, लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत के उलमा से भी ये वाला काम लिया, क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला क्या था कि आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने सारी तशरीहात नहीं करवाई, बल्कि फिर इसकी मजीद तशरीहात नबी अलैहिस्सलाम के जो तरबियत याफ्ता शागिर्द थे, सहाबा कराम, फिर उनके शागिर्द ताबईन कराम, फिर उनके शागिर्द तबा ताबईन, और ये सिलसिला आज तक जारी है, तो इनके जरिए से फिर तशरीहात करवाई, ठीक है। और उनका पर उसूल रखा कि वो तशरीह बस ऐसी होनी चाहिए जो कि उसूल दीन के खिलाफ नहीं जाती हो, फिर करो जो करना है, ठीक है। दौड़े घोड़े दौड़ा तो अपने इस तशरीह के अंदर। तो थानवी रहमतुल्लाह ने फिर इस तरीके से तशरीह करी, जाहिर का और दिल का उस जात की तरफ करना तुमसे जाहिर करता हूं, ठीक है। अल्फाज में ये नहीं था कुरान मजीद के, लेकिन इसी को तो तफसीर करना कहते हैं। अच्छा, आगे फरमाया कि जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, फतर समावाती वल अर्द, ठीक है, इसको तर्जुमे भी पढ़ चुके थे कि खाली फिजिकल स्ट्रक्चर पैदा नहीं किया बल्कि उसकी फितरत भी पैदा की, उसकी जो है वो नेचर भी अल्लाह ताला ने ही पैदा की है, ठीक है। तो और मैं तुम्हारी तरह शिरक करने वालों में से नहीं हूं, मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मतलब वमा ना मिनल मुशरिकीन, भाई जिनसे मुखातब हो रहे हैं उनसे बात करें ना कि आई एम नॉट लाइक यू, ठीक है। बुखारी एक जो है वो एक उसूली स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि मैं मुशरिक नहीं हूँ, बल्कि कंपेयर कर रहे हैं कि देखो तुम जो ये हरकतें कर रहे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये हरकतें नहीं करने वाला हूँ। तो अल्लाह की तरफ भी नबी सलील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ भी जो है वो एट्रीब्यूट किया कि अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला अगर मुझे हिदायत नहीं देता तो फिर मैं हिदायत नहीं आ सकता था, लेकिन जहां जरूरत महसूस करी वहां पर ये भी कहा कि मैं शिरक करने वाला नहीं अच्छा ये तो तरावी का एक सवाल हुआ था, और उसके लिए दिन में एक और बात आई कि आमतौर पे जो खवातीन को निकल करके मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए जो कहा जाता है ना, या वो खवातीन अपनी तरफ से जो है वो इसका एक्सक्यूज बनाती हैं कि जी हम मस्जिद में जाके तरावी पढ़ेंगे, तो वो क्या एक्सक्यूज होता है कि जी घर में तो पढ़ी नहीं जाती, या घर में जो है वो माहौल नहीं बनता, तो जहां पे हम चले जाते हैं तो वहां माहौल बन जाता है, इस वजह से हम बाहर जाकर के तरावी पढ़ना चाहते हैं, हम मस्जिद जाके तरावी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब है जी? वहां पे मस्जिद में जाकर के एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बन जाता है, या जो है वो हमारा दिल लग जाता है मस्जिद में जाकर के, तो इस वजह से हम तरावी मस्जिद में जाकर के या किसी दूसरे के घर में जाकर के पढ़े होते हैं। अपनी अकेली तरावी में तो मूड नहीं बनता, अपने अकेली तरावी में तो माहौल नहीं बनता, घर के अंदर माहौल नहीं बनता। तो उसका जवाब जो है ना, पहली बात तो ये है कि इबादत जो है ना वो अपने मन की खुशी के लिए नहीं की जाती है, वो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई है तरीका उसके लिए की जाती है। जो मन के लिए आप इबादत कर रहे हैं ना, तो वो इबादत नहीं है, वो मन मर्जी कहलाती है, उसको मन मर्जी कहलाती है, इबादत नहीं कहलाती, ठीक है? तो हमने जो है ना वो लुत्फ नहीं ढूंढ रहे हैं, हमने तो लतीफ को ढूंढना है, लतीफ अल लतीफ जो कि अल्लाह है, ठीक है? तो जिस हमें अल्लाह की रजा है जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताई है, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट तो हमें बताया नहीं है, ठीक है? अल्लाह ताला ने तो पूछ के तो आई नहीं है कि आपके क्या रजा है, और आप भाई नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि तुम्हारे लिए बेहतर घर के अंदर है। तो हमने मन मर्जी नहीं करनी, हमने अल्लाह मर्जी करनी है। और जो हमारे जो फरमाया करते हैं, इन्होंने लिखा कि हम के अब्दुल लतीफ बने, अब्दुल लुत्फ ना बने, अब्दुल लतीफ बने, अब्दुल लुत्फ ना बने, कि लुत्फ के लिए जो है वो मस्जिद जाके तरावी पढ़ रही है। लुत्फ से मुराद जरूरी नहीं होता कि झूले झूले पे झूलना, बल्कि लुत्फ का मतलब एक दिल का वो भी होता है, राइट? हाँ, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग गुड, ये भी लुत्फ होता है। तो अब्दुल लुत्फ नहीं बनना, लुत्फ का बंदा नहीं बनना, अब्दुल लतीफ बनना है, ठीक है? और दूसरी बात चले, अगर आपसे पूछें दूसरी बात क्या, यहाँ पर किसी ने लिखा खवातीन ये भी कहती हैं कि इस तरह हमारा पूरा कुरान हो जाता है, और सुन लेते हैं इस बात को बहुत बड़ा और अच्छा समझती हैं, गलत समझती हैं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये जो है ना वो अब्दुल लुत्फ भी हैं और अलपरस्त भी, इसी तरह से बातें करते नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दूसरा एक तो ये कि भाई अब्दुल लुत्फ नहीं बनना, अब्दुल लतीफ बनना है ना, ठीक है? दूसरी बात ये आपसे पूछ रहा था, उसी अहम बात क्या है कि भाई घर में माहौल नहीं बनता, बाहर माहौल बनता है। इसके ऊपर क्लास में 3-4 क्लासेस पहले बात भी हुई थी, क्या 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 है, क्या करना चाहिए फिर जी? घर में माहौल बनाए ना, खुद घर में माहौल बनाए, इस पे क्यों नहीं मेहनत कर रही है? सीखें, बगैर सीखे कुछ नहीं हो सकता, घर में माहौल बनाना सीखना होता है और फिर उसके ऊपर अमल करना होता है, तब घर में माहौल बन जाता है भाई। अल्लाह ताला नहीं है मदद करने वाले, राइट? अल्लाह ताला नहीं, आपकी मदद नहीं करेंगे, क्यों? आपके साथ कोई दुश्मनी है अल्लाह को? सोशलाइज और अल्लाह वालों को देखने की नीयत से जाया जा सकता है मस्जिद? नहीं, ये अल्लाह वालों को देखने की नीयत से मस्जिद जाया जा सकता है, मतलब आप जाकर के अल्लाह वालों को देखेंगे मस्जिद में तो तरावी कैसे पढ़ेंगे फिर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जो औरतें मस्जिद में जाती थी ना, वो नबी अलैहिस्सलाम को सुनने के लिए जाती थी, ठीक है ना, सीखने के लिए जाती थी। हालांकि मदीना मुनव्वरा के अंदर बहुत सारी मस्जिदें मौजूद थी। शेख उल हदीस दारुल उलूम देवबंद के मौलाना सैयद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उससे साजिश ने सुना, उस वक्त 24 मस्जिदें थी मदीना मुनव्वरा में, और लोग दूर दूर रहते थे, सिर्फ जो है सारे के सारे वो उधर नहीं रहते थे जहां मस्जिद नबी थी, ठीक है? तो दूर के लोग दूर की मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिद क़िबलतैन, नहीं पता मस्जिद क़िबलतैन क्या चीज है, राइट? कितना दूर है मस्जिद नबी से, तो वहां पे इंसान नहीं रहते थे, वो क्या मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ते थे? मस्जिद कुबा, ये किस जमाने की है? इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है, मस्जिद नबी से कितनी दूर है? वहां के लोग जो है वो आकर के मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते थे? नहीं, जुमे के दिन आते होंगे, ठीक है? तो वहां की वो क्या खवातीन के साथ वो जिंदगी नहीं गुजारते थे, उनकी बीवियां नहीं होती थी, उनकी बेटियां नहीं होती थी, ठीक है, वो किधर जाती थी मस्जिद? नहीं, वो मस्जिद कुबा में नहीं जाके नमाज पढ़ती थी, वो मस्जिद क़िबलतैन में जाके नमाज नहीं पढ़ती थी, ठीक है, वहां पे भी सहाबा थे, यहाँ पर भी सहाबा थे, अल्लाह वाले वहां पे भी थे, शेख अब्दुल केदार कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ऐसे कई गुना बड़े अल्लाह वाले मस्जिद कुबा में और मस्जिद क़िबलतैन में होते थे नबी अलैहिस्सलाम के, चूंकि वो सहाबी थे। लेकिन वहां की औरतें अल्लाह वालों को ढूंढने के लिए वहां पे नहीं जाया करती थी, ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए था, सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के लिए थी, और ये नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने से ये एक्सेप्शन खत्म हो गए, ठीक है। तो औरतों का अल्लाह ताला ने करना फी बुयूतिकुन्ना का हुक्म कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो अब माहौल बनाए ना, सीखे ना माहौल बनाना, आपके घर में क्यों माहौल नहीं है, क्योंकि आपने बनाया नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये क्या चीज होती है, ठीक है, आपको तो इंजीनियर बनाया गया है, आपको डॉक्टर बनाया गया है, आपको साइंटिस्ट बनाया गया है, आपको जो है वो पता नहीं और क्या क्या बनाया गया है, आपको ये सिखाया ही नहीं किसी ने राइट कि घर के अंदर माहौल कैसे बनाते हैं, तो इसको सीखें, घर में माहौल बनाए, ठीक है। और दीन उससे पहले पहले माहौल बनने से पहले पहले इतना जान लें कि दीन जो है ना वो अल्लाह के हुक्मों का नाम है, ठीक है, ये जो काफिर है ना इन्होंने हमें ये पट्टी पढ़ानी शुरू करी भी है बड़े बड़े पक्के तरीके से, और हमारे नौजवानों को ये पट्टी पढ़ा चुके हैं कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दीन का अहकाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अहकाम की, कोई कोई रेलेवेंस नहीं है अहकाम की दीन के अंदर, ये पक्की पट्टी ये पढ़ा चुके हैं आपको और आपके औलादों को, इसी वजह से हम अहकाम को छोड़ करके हम अपने मजे ढूंढ रहे होते हैं दीन के अंदर, कोई किसी तरीके से मजे ढूंढ रहा है, कोई किसी तरीके से मजे ढूंढ रहा है, कोई किसी ने कोई नाम दिया हुआ है मजों का, ठीक है, अहकाम को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं दीन से, या बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में वो एक्चुअली बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अहकाम हैव नथिंग टू डू विद द दीन फॉर देम, ठीक है, तो हम आपको यही बता रहे हैं कि अहकाम अल्लाह का हुक्म, मेरा हुक्म और मेरा मेरी अकल मेरी मर्जी, मेरा मेरी मर्जी, मेरा जिस मेरा जिस्म मेरी मर्जी भी नहीं चलता, मेरा दीन मेरी मर्जी भी नहीं चलता, ठीक है। अच्छा, वरना फिर वही होगा, लकुम दीन हुकुम वली दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है भाई, तुमने अपना दीन बनाया है, अपने अहकाम बनाए हैं, जो तुम्हारी अकल हुक्म देती है तुम उसको दीन समझ के बैठे हुए हो, ये तुम्हारा दीन है, ये अल्लाह का दीन नहीं, ये अल्लाह का दीन नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई मैसेज मेरे छोड़ तो नहीं गए, जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भी मस्जिद जाती हैं बास खवातीन, जो नहीं जाती उन्हें बुरा समझती हैं, भाई समझने दें उनको बुरा यार, ठीक है, आप अपना माहौल बनाए, इल्म हासिल करने का माहौल बनाए, ठीक है, इल्म हासिल करने के लिए सिर्फ, अगर आपको घर बैठे जूम के ऊपर इल्म नहीं मिल रहा है, सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए, क्योंकि इल्म हासिल किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए इल्म की मजलिस के अंदर जाए, तरावी इल्म की मजलिस नहीं होती है, तरावी इल्म की मजलिस नहीं होती है, ठीक है, तो इल्म हासिल करना क्योंकि प्री रिक्विजिट है सही अमल करने के लिए, सिर्फ इल्म की मजलिस के लिए औरत घर से बाहर जा सकती है, इसी वजह से उलमा मशायख अकाबरीन सब ने औरत के मदरसे जो हैं उनके लिए एक एक्सेप्शन रखी है ये, क्योंकि क्योंकि उसके बगैर आप घर में, अगर जूम तो अब पैदा हुआ है ना, जूम तो अब ईजाद हुआ है ना, व्हाट्सएप तो अब ईजाद हुआ है ना, पहले नहीं था, ठीक है, लेकिन वो इल्म भी जो है ना वो भी चेक करना है कि भाई कौन सा इल्म हासिल कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं हर इल्म हासिल करने के लिए आप भागे चले जा रही हैं बाहर, नहीं, जो आपके लिए रेलिवेंट फायदेमंद इल्म है उस इल्म को हासिल करने के लिए अगर घर में नहीं मिल रहा है तो फिर बाहर जाना पड़ जाएगा, और वो भी पर्दे के साथ, वो भी पर्दे के साथ, ठीक है, इलाज घर में डॉक्टर मौजूद नहीं है तो अब जिंदा रहेंगी तो फिर आप अमल करेंगे ना, जिंदा रहेंगी तो इल्म भी हासिल करेंगे ना, अगर इतना बीमार पड़ गई इतना जो है वो इलाज ही कुछ नहीं किया तो फिर इल्म कहाँ से हासिल करेंगी, अमल कहाँ से करेंगे, फिर तो इलाज के लिए किधर जाना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा, किधर जाना पड़ेगा, कहीं भी चली जाएंगी इलाज के लिए, नहीं चेक करेंगी जहां पे सही इलाज होता है वहीं पर जाएंगी, है ना, क्या ख्याल है, इलाज करने के लिए घर से बाहर जाना है तो क्या आप जहां भी बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे इलाज होता है वहां घुस जाएंगे जाकर के, इलाज कर दो जी मेरा क्योंकि आपके यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, नहीं पहले चेक करेंगे ना कि सही इलाज होता है कि गलत इलाज होता है, राइट, उसी तरीके से इल्म के लिए भी घर से बाहर निकलना है ना, तो इधर कहीं भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है कि इधर इल्म मिलता है, नहीं, उधर जाकर के इल्म हासिल करना शुरू नहीं कर देना, बल्कि पहले सब छान फटक करनी है कि यहाँ पे इल्म सही मिलता है, सही तरीके से मिलता है, पर्दे के साथ मिलता है, अकायद भी सही है, और जो है वो पहले सुन्ना वल जमात के मुताबिक जो है वो तरीका भी है, तो वहां से जाकर के इल्म हासिल करना, बिल्कुल जिस तरीके से इलाज भी जो है ना वो सही डॉक्टर्स के पास जाकर के करना है, घर से बाहर ही निकल के करना पड़ेगा, अगर घर के अंदर डॉक्टर और इक्विपमेंट मौजूद नहीं है तो घर के बाहर निकल के करना पड़ेगा, ठीक है, या ये घर से बाहर नहीं निकलना तो माशाल्लाह आप घर के अंदर एक अस्पताल बना लें, राइट, तो अस्पताल तो बना नहीं सकती लेकिन नमाज का माहौल तो बहुत आसान है बना लेना, घर के अंदर थोड़ा सा सीखना होता है आसान हो जाता है, अल्लाह ताला मेहनत फरमाते हैं, ठीक है। अच्छा तो फरमाया कि अच्छा ये तो तरावी के सवाल से फिर बात यहाँ शुरू हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं शिर करने वालों में से नहीं हूँ, ना एतकादन ना कौलन ना अमलन, ये तीन बहुत अहम नुकते हैं कि एतकादन यानी मेरे जहन की सोच भी जो है ना वो शिर्क वाली सोच नहीं है, जहन की सोच भी मुशरिकाना सोच नहीं है कि मैं अल्लाह ताला को नाकिस समझ रहा हूं, देखिए हमने तो समझ में नहीं आता ना, हम तो सोचते नहीं है कि हम तो अब बुतों की तो परस्तिश नहीं करते तो इस वजह से हम तो शिर्क नहीं करते, हम तो बुतों के सामने सर नहीं झुकाते इस वजह से हम शिर्क नहीं करते, लेकिन हम अल्लाह को नाउज बिल्ला नाकिस समझते हैं, नाकिस, ही इज नॉट कंप्लीट, ही इज नॉट ऑल पावरफुल, ही इज नॉट ऑल नोइंग, ही इज नॉट ऑल केपेबल, क्या मतलब कि जब तक अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए ना किसी बुत की, किसी जो है वो काफिर की अजमत को ना समझा जाए, काफिर की जो है वो बात ना मानी जाए, उस वक्त तक जो है वो मसला हल नहीं होगा, अल्लाह की नाफरमानी ये बगैर मसला हल नहीं हो सकता, झूठ बोले बगैर मसला नहीं हो सकता, तो हम क्या कह रहे हैं, हमारा एतकाद क्या है कि अल्लाह ताला नाकिस है, अल्लाह ताला कंप्लीट नहीं है, अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं कर सकता, अल्लाह ताला की नाफरमानी किए बगैर काम नहीं बनेगा, इसको हम शिर्क नहीं समझते, इसको हम शिर्क नहीं समझते, क्यों, काम बनाने के लिए आपको हेल्प की जरूरत है अल्लाह के अलावा किसी और की, तो क्या ये शर्त नहीं है, राइट, भाई गलती हो रही है तो गलती को तस्लीम तो करें ना कम से कम, हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है वो कोई बहुत बड़े मुवाहिद हैं और हम जो है वो परफेक्ट हैं और हम आपको चाहते हैं कि आप भी परफेक्ट हो जाएं जैसे हम परफेक्ट हैं, हरगिज नहीं, सिर्फ ये बात यहां पर इसलिए हो रही है कि भाई गलती को एक्नॉलेज तो करे ना बंदा कम से कम कि हाँ यार ये वाकई ये तो मैं गलती कर रहा हूँ यार, ताकि तौबा की तौफीक तो मिले ना उसको, तौबा तो करे ना अल्लाह ताला से, माफी तो मांगे ना अल्लाह अब तक मैंने क्या किया है, इसलिए सारी बातें की जा रही है कि एतकादन भी हमने शर्क नहीं करना है, कौलन भी नहीं करना है कि कोई ऐसी बातें नहीं कहना शुरू हो जाए किसी के बारे में जो कि उसको खुदा का दर्जा दे दें, खुदा के मकाम के ऊपर बिठा दें, कहनी भी नहीं ऐसी बातें पीर साहब के बारे में, शेख साहब के बारे में, हजरत जी के बारे में या किसी और जो है बुजुर्ग के बारे में, कोई ऐसी बात नहीं कहनी है कि जैसे कि बस वो तो बस सब कुछ वही है, वही सब कुछ कर सकते हैं, वही सब कुछ कर चुके हैं और बस अल्लाह पिक्चर में से निकाल करके सारा के सारा जो है पिक्चर के अंदर हजरत जी फैले हुए हैं, राइट, पूरे पिक्चर में हजरत जी फैल गए हैं और अल्लाह उस पिक्चर से गायब, ये कौलन शिर्क होगा, ये कौलन शिर्क होगा, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं बरेलवी हजरात को कि वो शिर्क करते हैं, शिर्क भाई हम कौन सा शिर्क नहीं कर रहे, ठीक है, तो कौलन भी शिर्क नहीं करना है और अमलन भी शिर्क नहीं, ठीक है, अमलन शिर्क से अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम महफूज होते हैं लेकिन कोई इस किस्म की गलती नहीं करनी है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अच्छा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं थे, ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह के अल्फाज हैं, क्योंकि थानवी रहमतुल्लाह ने जानते हैं जिस जमाने में उन्होंने तफसीर लिखी थी हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं वो एतकादन शिर्क में मुब्तला हो रहे हैं, कौलन शिर्क में मुब्तला हो रहे हैं, अमलन शिर्क में मुब्तला हो रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि देखो ये कहना कि मैं मुशरिक नहीं हूं, याद रखो इसका मतलब ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि तुम इनमें से किसी 1/3 के हिसाब से तो नहीं शिर्क में मुब्तला हो रहे, ठीक है, तो इसको तफसीर करना कहते हैं, आगे फरमाया कि और उनसे उनकी कौम ने बेहुदा हुज्जतें गनी शुरू कर दी। बेहुदा का मतलब बिल्कुल बेकार बकवास किस्म की बहस करना शुरू कर दी। हाँ, जब हमने उर्दू में जो हुज्जतें करने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, हुज्जत कर रहा है, हुज्जत कर रहा है, हुज्जतबाजी कर रहा है, तो अरबी का हाजहू, तो ये हुज्जतबाजी सिर्फ बहाने बनाना नहीं होता बल्कि ये झगड़ना भी, क्योंकि बहाने बना रहे हैं आप कोई काम कोई करना है लेकिन आप बहाने बना रहे हैं उसको ना करने के, तो ये भी एक झगड़ने की ही फॉर्म है। बेशक आप जोर जोर से लाउडली जो है वो आप चिल्ला नहीं रहे लेकिन फिर भी ये झगड़ना है। ठीक है, तो कौम ने बेहुदा हुज्जतें का नहीं छोड़ा, यानी भाई सही रीजन बयान करो ना, दलील के साथ रीजन बयान करो तो फिर ठीक है, लेकिन आप जो है वो बेहुदा किस्म की दलीलें बयान कर रहे हैं, यानी एब्सोल्युटली जिसके टांगे ही नहीं है जिसके ऊपर खड़ी हो सके। ठीक है, अच्छा इमरतों में एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट आया हुआ था कि हाँ बोंगे हम भरना भी सो कि घर में अच्छे माहौल को बनाए का मतलब, इससे इसका पहला स्टेप ये होता है कि जो एंटी दीन माहौल है उस माहौल को घर से निकालना पड़े। जैसे तरावी का है ना, माहौल नहीं बन रहा घर के अंदर, तो भाई जो आपने घर के अंदर तरावी के खिलाफ माहौल रखा हुआ है उसको निकालने के ऊपर मेहनत करें। ठीक है, और फिर उसके बाद अच्छा माहौल बनाने के ऊपर मेहनत करें, तब फिर तरावी दिल आपका लगना शुरू हो जाएगा घर के अंदर ही, तरावी के अंदर। ठीक है, फिर जो है वो खुदा भी मिल जाएगा और माशाल्लाह दिल की चाहते भी मिल जाएंगी, वरना दिल की चाहते नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं, मरने के बाद मिल जाएंगी। खुदा तो मिल जाएगा दुनिया के अंदर ही, अगर खुदा की मानेंगे तो खुदा दुनिया में ही मिल जाएगा, लेकिन दिल की चाहते दुनिया में नहीं मिलेंगी, मरने के बाद मिल जाएंगी। क्यों बनाई है भाई जन्नत, फालतू में बना दी है, इसीलिए तो बनाई है। ठीक है, एनीवेज तो फरमाते हैं कि और उनसे उनकी कौम ने बेहुदा हुज्जतें शुरू कर दी। वो ये कि ये रस्म कदीम है कि वजदना आबा अना नहा आबिदीन, कि हमने तो अपने बाप दादाओं को जो है ना वो इन्हीं की इबादत करते हुए देखा है। ठीक है, ये बेहुदा हुज्जत है कि बाप दादाओं को अगर कोई काम करते हुए देखा है तो वो ठीक है क्या? भाई बाप दादा से मोहब्बत होना एक चीज है, अच्छी चीज है, बाप दादा के साथ मोहब्बत होना, अम्मी के साथ मोहब्बत होना, नानी के साथ मोहब्बत होना, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ के तो नहीं है ना। ठीक है, कि अम्मा की और अब्बा की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला को जो है वो खड्डे में डाल दिया। ठीक है, हालांकि मानते भी हो कि अम्मा अब्बा जो है वो अल्लाह ने दिए, फिर भी जो है वो अल्लाह से ज्यादा इनकी मोहब्बत, तो ये दलील नहीं है कि अब्बा अम्मा को करते हुए देखा था इस वजह से। भाई जब आपके सामने अल्लाह ताला ने दलाइल रख दिए, पेश कर दिए कि अम्मा अब्बा, बेशक आप अम्मा अब्बा हैं, वो अम्मा अब्बा से उतर करके कुछ और नहीं बन जाएंगे, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो अम्मा अब्बा ही रहेंगे फिर भी। ठीक है, लेकिन अगर वो गलत है तो फिर गलत है ना, लेकिन दलील के साथ। ये नहीं कि बच्चे जो हैं वो जब उनको मूड नहीं होता अम्मा अब्बा की मानने का तो फिर वो उनको गलत कह देते हैं, कहते हैं अच्छा जी अब तो वो गलत है इस वजह से हमें उनकी बात ही नहीं। आपके पास क्या दलील है भाई साहब, बेटे साहब, आपके पास क्या दलील है कि वो गलत है? दलील से बात करो, ये तो नहीं कि तुम्हारे दोस्त कह रहा था कि अम्मा अब्बा गलत है इस वजह से वो गलत है, और दोस्त जो है वो तुमसे भी ज्यादा बड़ा हीरो था। ठीक है, तो दोस्त के कहने की वजह से अम्मा अब्बा गलत है, नहीं, नबी के कहने की वजह से अगर अम्मा अब्बा गलत प्रूव हो रहे हैं तो अम्मा अब्बा की तुमने फिर भी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन बात उनकी नहीं माननी है क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तुम्हारे पास आ गई, बेशक मशायख के वास्ते से ही आएगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तो तुम्हें नहीं बोलेंगे घर के अंदर कि तुम्हारे अम्मा अब्बा गलत काम कर रहे हैं, तो उलमा और मशायख के वास्ते से ही फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हम तक पहुंचती है ना कि भाई ये जो अम्मा अब्बा कर रहे हैं बात गलत है, तो ये दलील है, इसकी बुनियाद पर अम्मा अब्बा की जो है वो बात नहीं मानी जाएगी जब ये बात प्रूव हो गई। दोस्तों की वजह से या किसी और जगह कुछ कुछ पढ़ लिया था, ऊट पटांग अपनी मर्जी से उसकी अंडरस्टैंडिंग बना ली और अम्मा अब्बा को गलत कहना शुरू कर दिया, ये तो फिर आप खुद ही जो है वो यानी ड्रामा कर रहे हैं, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, तो जो नौजवान माशाल्लाह सुन रहे हैं तो वो भी बात को याद रखें कि इतना आसान नहीं है अम्मा बाप को गलत कह देना। तो यहाँ पर तो पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो कहते थे काफिरा वजदना आबाना लहा आबिदीन, तो फरमाया कि और मबूदान बातला के इनकार पर डराया भी कि कभी तुमको ये किसी आफत में ना पहुंचा दे, यानी एक तो हुज्जतें करी बेहुदा हुज्जत के अब्बा अम्मा को करते हुए देखा था ये वाला काम, इस वजह से हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद डराना भी शुरू कर दिया कि नहीं छोड़ेंगे तुम्हें हमारे बुत। कमा यदुल्लु अलैहिर जवाब, بقولی ہی ولا اخافو سے لے کے آخر تک، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا اخافو، ٹھیک ہے، تو اس جواب سے یہ بات مدلل ہوتی ہے، پروف ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے ڈرایا، ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن مجید کے الفاظ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے بتوں سے ڈرایا، رائٹ، وہاں پہ تو ہے قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا، وہاں پہ یہ تو ہے ہی نہیں کہ کافروں نے ان سے کہا کہ ہمارے بت تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تو پھر یہ کیسے انہوں نے لکھا تفسیر کے اندر، تو بھائی لا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربی شیئا، اس سے بات پروف ہو رہی ہے کہ انہوں نے بتوں سے ڈرانے کی کوشش کری تھی ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر. اچھا، آپ نے پہلی بات کے جواب میں تو یہ فرمایا کہ کیا تم اللہ کی توحید کے معاملے میں مجھ سے باطل حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو استدلال صحیح کا طریقہ بتلا دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا دل کھول دیا، مجھے بصیرت عطا فرما دی کہ کیسے جو ہے نا وہ تمہارے شرک کو پروف کرنا ہے تمہارے سامنے، یہ ہدایت اللہ نے، قد ہدانی، ٹھیک ہے، اللہ شوڈ می دا وے ہاؤ ٹو کاؤنٹر یور اسٹوپیڈیٹی، ٹھیک ہے، جس کو میں پھر تمہارے روبرو پیش کر چکا ہوں، اور محض رسم قدیم ہونا اس استدلال کا جواب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کوئی بیوقوفی کی حرکت کرنا شروع ہیں، جیسے ایتھیسٹ آج کل کے ایتھیسٹ جو ہے نا وہ بھی ایسی بیوقوفی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا وتا کچھ پتا نہیں ہے، وہ وہی اس نظام کے پلے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تم جو یہ مسلمان کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں وہ جو ہے وہ دین کو مانتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا دین صحیح ہے، تو یہ کوئی تھوڑی ہوئی کہ بھئی زیادہ بڑی تعداد میں اگر لوگ کسی چیز کو ماننا شروع کر دیں تو وہ چیز ٹھیک ہو گئی، اور وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ایتھیس کی یہ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جسٹ بیکاز بڑی تعداد میں لوگ کوئی غلط کام کرنا شروع ہو جائے تو وہ غلط کام ٹھیک ہو جاتا ہے، نہیں آف کورس اس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے دین اسلام ٹھیک ہے، جب نبی علیہ السلام دین اسلام کو لے کر کے آئے تو دنیا میں کتنے لوگ تھے جو دین اسلام کو صحیح سمجھتے تھے، ایک رائٹ، ایک بندہ تھے جو دین اسلام کو صحیح سمجھتے، پھر دو ہوئے، پھر چار ہوئے، پھر 10 ہوئے، پھر 100 ہوئے، تو تعداد تو کبھی بھی میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو یہی بات کہنا کہ جی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو یہ تو کوئی استدلال نہ ہوا نا، ٹھیک ہے، میرے استدلال کا جواب تو نہ ہوا یہ، پھر اس سے احتجاج تمہارے لیے بیکار اور میرے نزدیک غیر قابل التفات ہے، ٹھیک ہے، یعنی تم جو یہ دلیل پیش کر رہے ہو نا یہ دلیل تمہارے لیے بھی بیکار ہے، بیکار قسم کی دلیل ہے، اور میرے نزدیک یہ دلیل ہی نہیں ہے جو تم پیش کر رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ ان کو پوجا کرتے تھے، میں تو مانتے ہی نہیں اس بات کو، یہ بہت ساری ہے نا اسمپشنز کی بنیاد پر دلیلیں جو ہے نا وہ دلیل ہی بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کسی اسمپشن کو جو ہے وہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کر دیا وہ دلیل تو نہیں بن جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ غیر قابل اتفاق ہے یہ والی دلیل، اور دوسری بات کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالی کے ساتھ استحقاق عبادت میں شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حق عبادت ہے اس میں تم دوسروں کو شریک کر رہے ہو as if اللہ is not sufficient for you، ٹھیک ہے، تو یہ جو تم کر رہے ہو نا میں ان بتوں سے میں نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کے ساتھ اس کے حق میں ڈال رہے ہو، جیسے کسی کی بیوی ہو یا کسی کا شوہر ہو، ٹھیک ہے، تو اب شوہر کا بیوی کے اوپر حق ہے، بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے، تو اب کوئی بیوی کہے کہ نہیں میں شوہر والا حق جو ہے وہ میں کسی دوسرے کو بھی دوں گی تو کیا ہوگا پھر اس کے، شوہر والا حق دوسرے کو دینا یہ تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی شوہر اپنی بیوی کا جو حق ہے وہ کہے کہ نہیں میں کسی اور عورت کو بھی دوں گا جو تمہارا حق ہے، پھر بیوی سے برداشت ہوگا، یہ 128 خواتین موجود ہیں تو ان کو پتا ہے کہ کوئی شوہر کہے کہ نہیں جو آپ میری بیوی تو ہیں لیکن میں اوروں کو بھی بیویوں کی طرح سے ٹریٹ کروں گا، تو کوئی بیوی برداشت کرے گی اس بات کو، ٹھیک ہے، ہاں شریعت نے چار بیویوں کی اجازت دی ہے تو پھر چاروں بیویاں بن جاتی ہیں نا، یہ تو نہیں کہ چار جو ہیں وہ ان میں سے کوئی دو بیویاں ہیں دو جو ہیں وہ بیویاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، باندھی ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے پوری کی پوری، لیکن اس کے الگ حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن किसी गैर बीवी या गैर बांदी को उठा करके बीवी के मुकाम पे रखना और उसको बीवी वाला हक देना शुरू कर देना, तो फिर तो एक बीवी से बर्दाश्त नहीं होती ये वाली बात, शोहर से बर्दाश्त नहीं होगी ये वाली बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत का तो हमारे ऊपर 100% हक, 100% हक, ठीक है, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है सब अल्लाह का है, कोई हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है। तो मैं नहीं डरता ऐसे लोगों से जिनको तुम अल्लाह ताला के हक में घुसेड़ रहे हो, बीच बीच में अंदर कुछ कर रहे हो अल्लाह क्या, कि वो मुझको कोई सदमा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं उनमें खुद सिफत कुदरती मफकूद है, उनमें जो है ना वो कुदरत की सिफत ही नहीं है। यानी ये जो बुत हैं लकड़ी के और पत्थर के और प्लेटिनम के और ब्रॉन्ज के, राइट, इनमें तो किसी किस्म की कुदरत नहीं है, ये तो हिल भी नहीं सकते, खुजा भी नहीं सकते, उनके कोई मक्खी बैठ जाए उनके ऊपर तो मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। सिफत कुदरत मफकूद है, और क्योंकि ये सिर्फ बुतों को तो नहीं पूछते थे ना, ये चांद सूरज सितारों को भी पूछते थे, वो अब उनकी बात कर रहे हैं। और अगर किसी चीज में हो भी तो इस्तकलाल कुदरत मफकूद है। क्या मतलब कि जैसे चांद सूरज सितारों के अंदर कुछ कुदरत है, क्या मतलब कि उनकी जो रोशनी होती है, एक तो वो मूव करते हैं, ठीक है ना, मॉडर्न साइंस भी बताती है कि स्टार्स भी जो है वो फिक्स नहीं है बल्कि वो मूव करते हैं, बुध तो नहीं मूव करते हैं ना, स्टार्स मूव करते हैं, ठीक है, मून भी मूव करता है, रिवॉल्व रिवॉल्व रोटेट, ठीक है। और दूसरा ये कि उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने एक जात बनाई है, उनकी जो रोशनी है, चाहे वो रिफ्लेक्ट करके करें, चाहे वो जो है वो अपने फ्यूल को बर्न करके, तो भाई उससे जो है वो कितने तसर्रुफात होते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, कायनात के अंदर, जमीन के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो उनके अंदर कुदरत है भी, तो ये मुस्तकिल नहीं है, क्या मतलब ये इनकी अपनी नहीं है, ये इनकी जाती नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है, जब अल्लाह ने बनाया उससे पहले नहीं थी, और जब अल्लाह इसको इनको खत्म कर देंगे तो उसके बाद नहीं होगी, तो इस्तकलाले कुदरत नहीं है, ठीक है। तो तुम उनसे हमें मुझे डरा रहे हो जिनके अंदर या तो बिल्कुल ही कुदरत नहीं है, जिनके अंदर अगर थोड़ी बहुत है भी तो वो भी उनकी अपनी जाति नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, उनसे मुझे डरा लो। हाँ, लेकिन अगर मेरा परवरदिगार ही कोई अमर चाहे, अल्लाह का ही कोई फैसला हो जाए, तो वो दूसरी बात है, वो हो जाएगी, ठीक है। जैसे नबियों को भी तकलीफें पहुंची, फिजिकल भी पहुंची, दुख भी पहुंचे, राइट, तो वो अल्लाह की मर्जी, वो फिर वो हो जाएगी। लेकिन इससे आलेहा व अरबाब बातिला की कुदरत का सबूत या उनसे खौफ की जरूरत कब लाजम आती है? भाई अगर मुझे अल्लाह की मर्जी से कोई तकलीफ पहुंच रही भी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे बुतों के अंदर जो है वो कोई कुदरत आ गई है, कि वो नाराज हो गए मुझसे, इस वजह से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। जैसे हम जो है ना, वो हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, फौरन हमें वो फलाने ने मुझ पर जादू कर दिया होगा, फलाने ने जो है वो कुछ पढ़ दिया होगा, फलाने ने जो मुझे टेढ़ी निगाह से देख लिया होगा, ठीक है भाई, आपने कोई हरकत करी थी, अल्लाह को नाराज किया था, तो फिर अल्लाह ने किसी को सबब बना करके आपको तकलीफ पहुंचा दी, तो वो अल्लाह का काम करने का है ना, अब आप अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से तौबा तायब हो। लेकिन अल्लाह को तो बिल्कुल पिक्चर ही में नहीं लेकर के आते हम, जो है वो उसी बंदे के पीछे पड़ जाते हैं या उसी के बारे में दिन रात सोचे चले जा रहे हैं कि ओ उसने ये कर दिया होगा, उसने वो कर दिया होगा। पहली बात तो आप इतने अहम हैं नहीं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा अहम समझते हैं कि दुनिया के लोग फारिग बैठे हुए हैं, सारी तवज्जो उनकी हमारे ऊपर है, वो बस उनका कोई और काम नहीं है, बस वो हमें जादू करते रहते हैं, अपने आप को इतना अहम समझना, ठीक है, कि लोग जो है ना बस उनका और कोई काम ही नहीं है सवाय इसके कि वो मुझे नजर लगाते रहें और मुझ पे जादू करते रहें और जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो मैं प्लानिंग बनाते रहें। ये अपने से मोहब्बत की एक माशाल्लाह एक मैनिफेस्टेशन होती है सेल्फ लव की, ठीक है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि किसी वजह किसी के ने जादू कर भी दिया हो भाई, लेकिन हर ऐसा इतना फारिग नहीं लोग बैठे हुए यहाँ पे जाओ, लेकिन फिर भी चले कभी कोई कोई बंदा था उसने कर कर दिया, तो भाई वो भी उसने अल्लाह की मर्जी के बगैर तो नहीं किया ना, ठीक है, अल्लाह ने उसके जरिए से आपके ऊपर करवाया है, तो फिर अब उसको हटाने के लिए अल्लाह ताला से कुछ माफी शाफी मांग करके देखें जरा, ठीक है, अल्लाह को मत निकाला करें पिक्चर से। इलाज भी करना है ना, अगर जादू के लिए आमिल के पास भी जाना पड़ गया, जो कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी दलदल होती है कि जिससे फिर निकलना मुमकिन नहीं हो पाता, तो आमिल के पास नहीं, भागने चले जाना चाहिए, ठीक ठीक है, हरगिज नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी ने जादू कर दिया हो, उसका मतलब ये नहीं कि अब आमिरों के बाद भागना शुरू करें। उधर जाएंगे फिर मुश्किल होगा उधर से निकलना। भाई अल्लाह से रुजू कर लेना पहले, जैसे कोई बीमारी हुई है तो कुछ अकलमंद लोग होते हैं फॉरन से एंटीबायोटिक खाना नहीं शुरू कर देते, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती है फिर वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और राइट, तो भाई पहले आसान वाला इलाज करें अल्लाह ताला के पास, आपको हो सकता है आपको एंटीबायोटिक यानी आमिल के पास ना जाना पड़े। ठीक है, तो अगर मुझे कोई तकलीफ पहुंची है तो इसमें बुतों की कुदरत कहाँ से साबित हो जाती है? तो ये कहा कि ना तो उनकी कुदरत साबित हुई ना जो मुझे उनसे डरने की कोई जरूरत है। और मेरा परवरदिगार जिस तरह कादरे मुतलक है, जैसा उन अशिया से मालूम हुआ इसी तरह, ठीक है, यानी इन अशिया से पता चला ना हमारा असल में तो अल्लाह कादरे मतलब है, ये कोई कादरे मतलब भी थोड़ी है। इसी तरह वो हर चीज को अपने इहाते इल्म में भी घेरे हुए, ठीक है, यानी जिस तरह बुतों के पास कोई कुदरत नहीं है, सूरज चांद सितारों के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कुदरत है, तो क्या पता चला कि भाई अनलिमिटेड कुदरत तो अल्लाह के पास। लेकिन अल्फाज में ये नहीं था, अल्फाज में क्या था कि वसा रब्बी कुल्ल शैइन इल्मन, अल्लाह ताला का इल्म जो है वो हर चीज को मुहित है। क्या मतलब? अल्लाह ताला ने अगर यहां पर कुदरत का जिक्र नहीं किया, सिर्फ इल्म का जिक्र किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला के पास इल्म तो है कुदरत नहीं है, नहीं, बल्कि कुरान के दीगर मुकामात से भी हमें समझना पड़ेगा बात को कि भाई यहाँ पे सिर्फ इल्म मुराद नहीं है बल्कि कुदरत और इल्म दोनों मुराद है, अल्लाह ताला के पास दोनों। ठीक है, तो इल्म से फिर बात समझ में आती है। जो कम इल्म होता है बस तर्जुमा पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे तो सिर्फ इल्म का जिक्र है, इसका मतलब अल्लाह के पास बस इल्म ही है, लेकिन वो अपनी कम कम इल्मी की वजह से ऐसा समझ रहा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कुरान का तर्जुमा पढ़े, कुरान मजीद का, और वहां पे वो पढ़े कि क्या है वो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम वयुसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ओहो, अल्लाह नीड्स माय हेल्प, राइट? क्योंकि नसरा यंसुरु का मतलब जो होता है वो तो हेल्प करना होता है, और अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं अगर तुम अल्लाह की हेल्प करोगे, ओ इसका मतलब ये है कि आई नीड टू हेल्प अल्लाह, बेचारा अल्लाह नाउज बिल्ला जो है वो अब अल्लाह को हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो तर्जुमे से तो फिर ये हो सकता है कि बंदा समझना शुरू कर दे अल्लाह को हेल्प की जरूरत है। ठीक है, तो भाई कैसे समझ में आएगा जब एंड टू एंड एक वाइडर अमाउंट ऑफ नॉलेज होगी या नॉलेज वालों के साथ ताल्लुक होगा, तब जो है ना ये अल्फाज कुरान जो है वो इंसान को यहदी बिही कसीरा व युदल्लु बिही कसीरा, कुरान मजीद खुद फरमाते हैं ना, युदल्लु बिही कसीरा, ये इसी कुरान के जरिए से अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह कर देते हैं, इसी कुरान के जरिए से राइट बहुतों को गुमराह कर देते हैं। तो अब उसका क्या प्रोसेस क्या होता है कि वो अहले इल्म और अहलुल्लाह से कट करके अपने ही आप में जो है वो कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे हैं या कुरान मजीद को समझने की अपने अकल की बुनियाद पे कोशिश कर रहे हैं, वो जी वो अल्लाह को कुछ और ही समझ बैठे, अल्लाह तो हेल्प जरूरत है अल्लाह तुम हेल्प की। ठीक है, तो भाई ये पूरा एक पैकेज है दीन जो है ना, ये पूरा एक पैकेज है, इसमें पिक एंड चूज जो हम करते हैं ना वो पिक एंड चूज पर हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। अमली तौर पे तो बहुत करते हैं ये बात, ठीक है, कि जो चीज हमें सूट कर रही है ना कुरान वो हदीस में से वो हम पिक कर लेते हैं, और जो चीज हमें सूट नहीं कर रही होती वो हम किसी और के ऊपर डाल देते हैं। ये अमली पिक एंड चूज करना हुआ दीन का, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है हमें। और उसी तरीके से इल्मी पिक एंड चूज करना, इल्मी पिक एंड चूज करना ये अमली पिक एंड चूज करने से भी ज्यादा खतरनाक है, कि इससे तो फिर इंसान का अकीदा ही खत्म हो जाता है, काफिर हो जाता है इंसान, इनकार करने वाला हो जाता है इंसान इल्मी पिक एंड चूज करने से। ठीक है, तो में काफी लगा था हमारे बात को समझने। अच्छा ये जल्दी से कहूँ करने की कोशिश कर लेते हैं, काफी एक्स्ट्रा टाइम हो गया। तो क्या तुम सुनते हो और फिर भी ख्याल नहीं करते? क्या तुम यानी सुनते हो और फिर भी ख्याल नहीं करते, यानी अफला करूं, अफला तदर करूं, यानी तुम ये बातें सुन तो रहे हो लेकिन तुम नसीहत क्यों नहीं हासिल कर रहे हो, तुम गौर पे अटेंशन क्यों नहीं कर रहे हो उन चीजों की तरफ, ना गौर क्यों नहीं कर रहे हो, तदर करो, अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो ये फरमाया। अच्छा, किसी लोग ये जादू वाली बात कहते हैं ईमान के बारे में भी कि कोई इतना फारिग नहीं है कि तुम्हारे ईमान के पीछे पड़े। नहीं, बहुत फारिग है, ईमान के पीछे पड़ने वाले बहुत सारे लोग बैठे हुए। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप उनको जवाब दें, नहीं आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बहुत लोग फारिग बैठे हैं, ये शैतान इब्लीस जो है ना, ये बिल्कुल फारिग है इस काम के लिए, बिल्कुल फारिग है इस काम के लिए, ईमान के पीछे पड़ने के लिए। ठीक है, और इस शैतान के जो तरबियत याफ्ता इंसानी शयातीन मौजूद है, क्योंकि कुरान मजीद हमें बताता है कि शयातीन जो है वो इंसानी शक्ल में भी होते हैं और जिन्नी शक्ल, जिन की शक्ल में भी होते हैं, ये दे आर पेड टू डू दिस। वो बाकायदा इंसानी शयातीन को तो बाकायदा उनका निजाम बना हुआ है, वो ईमान के बहुत फारिग बैठे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल इस बेवकूफी की बात का शिकार ना हो जाइएगा। जादू करना एक अलग चीज है भाई, कि लोग फारिग बैठे हुए नहीं है आपके जात के ऊपर जादू करने के लिए, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये बिल्कुल आप जो बात करेंगे बिल्कुल एक अलग कॉन्टेक्स्ट की बात है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लोग ईमान के पीछे पड़ने के लिए बिल्कुल फारिग बैठे हैं, मतलब ये कि बहुत ही मेहनत के साथ और सिस्टम के साथ वो आपके पीछे ईमान के लगे हुए हैं, आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो है नहीं ऐसा। ठीक है, इट इज शैतान जॉब डिस्क्रिप्शन, वो तो उसने कसमें खाई है, मैंने नहीं छोड़ना है। कैन यू एक्सप्लेन इल्मी पिक एंड चूज? भाई इल्मी पिक एंड चूज यही ना, कि आप अपनी, आप यही तो बता रहे थे कि आप जो है वो तर्जुमा पढ़ना शुरू करते हैं बगैर किसी ऑथेंटिक शेख के, बगैर किसी ऑथेंटिक आलिम के शागिर्दी इख्तियार किए बगैर। ठीक है, तो यू विल एंड अप कमिटिंग इल्मी पिक एंड चूज, यू विल एंड अप, यानी कि आप डिलिबरेटली ये काम नहीं कर रहे होंगे लेकिन दिस विल हैपन टू यू। क्यों? इसलिए कि जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद शैतान बन जाता है, अल्लाह ताला ने उसको फारिग किया हुआ है इस काम के, और हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि तुम अपने नेक उस्ताद जो है वो सर्च करो, ठीक है, और उनके साथ जुड़ो, ये अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है। हम उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो फिर अल्लाह की नाफरमानी बनती है ना, ये तो फिर उसकी सजा हमें ही मिलती है कि शैतान साहब जो है वो फारिग बैठे हुए हैं हमारा उस्ताद बनने के लिए। ठीक है, तो यू एंड अप डूइंग इल्मी पिक एंड चूज बिकॉज शैतान इज योर टीचर। ठीक है, और फिर वो इसी किस्म की उल्टी सीधी, तो ये मतलब इसका ये है, इसका मतलब ये है भाई, क्या आपकी सोर्स है, क्या आपकी दलील है जो आपने जो है वो इसको अजम्पशन करके बैठे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज ने इतनी अरबी पढ़ी थी, सर्व भी पढ़ी है, नहव भी पढ़ी है, और बाकायदा आलम कोर्स के जो है वो इम्तिहान भी दिया है और सब कुछ किया है ना, मुझे क्या जरूरत है ये मारिफुल कुरान को लेकर के पढ़ाने की, नहीं खाली जो है वो कुरान का सहीफा मसहफ जो है वो उठाएं उठ करके शुरू हो जाए तफसीर करना। इतनी अरबी तो कम अज कम आ गई है या आ जाती है, अगर और मेहनत करते तो और भी अच्छी अरबी आ जाती, खुद ही सही मसहफ उठा करके तफसीर करना शुरू कर देते, इधर बैठ के मारफुल कुरान और बयान कुरान हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि की तफसीर पढ़ रहे हैं, हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैहि की तफसीर पढ़ रहे हैं, हजरत मौलाना शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि का तर्जुमा पढ़ रहे हैं, खुद ही करना शुरू हो जाए भी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मशाइख के सामने अपने आप को सबमिट किया उन्होंने, यानी घोल की पिला दी ये बात कि नहीं ये नहीं कर, अपने आप को बुजुर्गों के, बड़ों के, इल्म वालों के ताबे रखना है बना। ठीक है, अपनी डेढ़ इंच की जुदी मस्जिद हरगिज हरगिज नहीं बना रही है। ठीक है, बस यहाँ पे काफी टाइम हो गया, इस वजह से यहाँ रोक देता हूँ, क्लास के बाद इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो बात बाकी, बता फरमाए, और हमारे जो भी टूटे फूटे अमाल हैं रमजान मुबारक के हैं उसके अलावा हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन सबको कबूल फरमाए, और हर किस्म के फितनों से, आजमाइशों से, परेशानियों से, बीमारियों से, फतनों से, मर्जों से, अल्लत से, किल्लत से, जिल्लत से, चाहे दुनिया की हो चाहे आखिरत की हो, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।